आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर।
SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम पे आपका स्वागत है। ये है 27 फरवरी 2026 की एक ढलती हुई भीगी हुई सी शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहद खुश होंगे। आज का SBS कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। दोस्तों, आज बात करेंगे बारिशों की। जैसे कि मैंने बताया, सिडनी में भयंकर बारिश हो रही है और ऐसे में कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हमें बारिश में ही खाने का मन करता है। तो आप जरूर बताइए मुझे कि बारिश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप खासकर खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा उस्ताद शुजात खान के शो के हमारे पास पासेस हैं। एक पास है हमारे पास। आपको मुझे ये बताना है कि उस्ताद शुजात खान कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं और ये गिव अवे खास सिडनी में रहने वालों के लिए ही है क्योंकि शो सिडनी में है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी ड्राउनिंग वर्कशॉप की जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त प्रयास से की गई है। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे भारत की बड़ी खबरें, जिसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रबल गुरंग से, जिन्होंने डिजाइन किया था दिलजीत दोसांझ का मेट गाला एंसेंबल। क्या है इस डिजाइनर की इस ख्याति के पीछे का व्यक्ति, ये जानेंगे आज के कार्यक्रम में। इसके अलावा होंगे बहुत सारे गीत संगीत, आपके संदेश और आपकी फरमाइशें भी, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम चलाएंगे गीतों की रेलगाड़ी। तो मुझे बताइए कि आपको बारिशों में कौन से खाने सबसे ज्यादा पसंद हैं। 04397997667 हमारा नंबर है। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि उस्ताद शुजात खान कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं और जीत सकते हैं सिडनी में होने वाले उनके कार्यक्रम का एक डबल पास भी। नंबर वही है 04397997667। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ संक्षिप्त समाचार की ओर। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। बड़ी खबर में सुज़न ली ने औपचारिक रूप से संसद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र फरर में उपचुनाव होना तय हो गया है। ये कदम उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाए जाने के सिर्फ 2 सप्ताह बाद उठाया गया है। सुज़न ली ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने के लिए लिखित सूचना दे दी है और वे विदाई भाषण देने के लिए संसद में वापस नहीं लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके 25 वर्षों के प्रयास और उपलब्धियां अपने लिए स्वयं बोलेंगे। उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लिबरल पार्टी, नेशनल पार्टी, वन नेशन और निर्दलीय उम्मीदवार मिशेल मिलथॉर्प के बीच कड़ा चार तरफा मुकाबला होगा। इसे एंगस टेलर के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी बीच बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं को अब एक नए राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने कर्मचारियों का विवरण देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। ये रजिस्टर हाल ही में लागू हुआ है और इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रों और राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नजर रखने में मदद करना है। इस रजिस्टर में वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पहचान संबंधी रिकॉर्डों को एकीकृत किया जाएगा। ये कदम इस क्षेत्र में बाल शोषण की रिपोर्टों के बाद उठाया गया है। इसके अलावा पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1,00,000 से अधिक कर्मचारी प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में अनिवार्य बाल सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर का कहना है कि ये पहल बाल देखभाल केंद्रों में गंभीर अपराधों को लेकर उठी चिंताओं के कारण शुरू की गई है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर ने सिडनी के असीरियन समुदाय के सदस्यों से मुलाकात के दौरान सरकार से अपील की है कि आईएस समूह के किसी भी समर्थक को ऑस्ट्रेलिया में आने की अनुमति ना दी जाए। एंगस टेलर का कहना है कि उन्होंने ऐसे लोगों से बात की है जो अपने देशों में अत्याचारों से बचकर आए हैं और उन्हें इस बात की चिंता है कि समूह से जुड़े लोग ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं। लिबरल सेनेटर जेन ह्यूम ने कहा कि सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का दायित्व है कि असीरन समुदाय को एक सुरक्षित देश मिले। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये है कि प्रस्तावित कानून संशोधन का समर्थन किया जाए जिसके तहत अन्य देशों को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वापस भेजने से रोका जा सके। वहीं नॉर्दर्न टेरिटरी में पारंपरिक भूमि स्वामियों के एक समूह को उनकी जमीन पर संचालित एक विशाल खदान से हुए सांस्कृतिक और आर्थिक नुकसान के लिए करोड़ों डॉलर का मुआवजा दिया गया है। न्यायाधीश कैटरीना बैंक स्मिथ ने मैकार्थर रिवर माइन के कारण गुंडाजी, यान्युवा और यान्युवा मारा समुदायों को हुए सांस्कृतिक नुकसान के लिए $54 मिलियन के मुआवजे का आदेश दिया है। ये खदान उनके पट्टे पर ली गई चारागह भूमि पर स्थित है। पारंपरिक भूमि स्वामियों ने वर्ष 2020 में नॉर्दर्न टेरिटरी सरकार को फेडरल कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि अधिकारियों ने खदान के खिलाफ उनकी लड़ाई में बाधाएं खड़ी की। उनका कहना है कि वे लगातार इस स्थल पर विकास रोकने के लिए संघर्ष करते रहे जबकि टेरिटरी सरकार बार बार विस्तार को मंजूरी देने के लिए कानून पारित करती रही। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर में लोग एक लगभग दृष्टिहीन रोहिंग्या शरणार्थी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। 56 वर्षीय यह व्यक्ति प्रवासन अधिकारियों की हिरासत से रिहा किया जाने के बाद मृत पाए गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें कड़ाके की ठंड में उनके घर से कई मील दूर छोड़ा गया था। समुदाय के लोगों ने न्याय की मांग की है और अधिकारियों की निर्णय प्रक्रिया को क्रूर और अमानवीय बताया है। शोक सभा में शामिल लोगों का कहना था कि आयोजन पीड़ित के जीवन को सम्मान देने के लिए किया गया। और अंत में खबरें भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्र संघ के मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 25 पुलिसकर्मी घायल हुए और 51 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया जिनमें से 14 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार छात्रों ने विश्वविद्यालय से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। ये विरोध यूजीसी मानदंडों के क्रियान्वयन पर कुलपति की टिप्पणी और जेएनयू पदाधिकारियों के निलंबन के खिलाफ था। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और हमला किया जबकि छात्रों ने अत्यधिक बल प्रयोग और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ 27 फरवरी 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं एक ड्राउनिंग वर्कशॉप की। भाई ऑस्ट्रेलिया और भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिडनी में एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों के विशेषज्ञों ने मिलकर डूबने से होने वाली मृत्यु को कम करने और नए प्रभावी तरीकों को समझने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। क्या रहा इस वर्कशॉप का पूरा ताना बाना, आइए जानते हैं नताशा कॉल की इस रिपोर्ट में।
ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही देशों में हर साल बड़ी संख्या में लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए सिडनी में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जहां दोनों देशों के विशेषज्ञों ने एक साथ मिलकर डूबने से होने वाली मौतों को कम करने के नए और प्रभावी उपाय खोजने के प्रयासों के बारे में विचार विमर्श किया। भारत में डूबने से हर साल हजारों मौतें होती हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया में विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय प्रवासी उन समूहों में शामिल हैं जिनकी डूबने से होने वाली मौतों में चिंताजनक रूप से अधिक संख्या है। विचारों के आदान प्रदान और मजबूत सांस्कृतिक ज्ञान का निर्माण करके कार्यशाला के प्रतिभागियों ने जल सुरक्षा में सुधार के नए टिकाऊ तरीकों का पता लगाने की कोशिश की है।
Drowning remains one of the major causes of accidental deaths in India. So the annual record that is collected mostly from police files, it says that the quantum of the magnitude is to the tune of 37,000 deaths per annum. But again, there is kind of some apprehension that it's only a tip of the iceberg. So many a times cases are not being reported to the police.
ये थे मानस प्रतिम रॉय, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जुड़े हैं और इस वर्कशॉप में शामिल थे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, जल सुरक्षा विशेषज्ञों, चिकित्सा और मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों सहित कई अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में देश में 38,000 से अधिक लोगों की मौत डूबने से हुई। मानस रॉय का कहना है कि डूबने से होने वाली इन ऊंची मृत्यु दरों से निपटने के लिए नई नीतियों और कार्य प्रणालियों की आवश्यकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग और साझा भागीदारी पर आधारित हो।
Drowning is not a thing that is to be tackled only by the Department of Health or Department of Meteorology or something like that. It's also Department of Education as well. So we need to convince the kids that it's a kind of a real danger, and we need to convince their parents, and as well we need to bring our Department of Social Security as well.
वे कहते हैं कि इस कार्यक्रम ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की नीति निर्माताओं को जल सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभव और जानकारी साझा करने का अच्छा मौका दिया है।
Both the countries have many things that are yet to be learned, and with the exchange of our ideas and experiences, both of us could achieve better than where we are now.
और वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी पानी में डूबने की समस्या गंभीर है। रॉयल लाइफ सेविंग ऑस्ट्रेलिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 350 से अधिक लोगों की डूबने से मौत हुई, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इनमें से 30% से अधिक लोग विदेश में जन्मे थे। रॉयल लाइफ सेविंग ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जस्टिन स्कार, जो भारत ऑस्ट्रेलिया कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय डूबने से होने वाली मौतों में जरूरत से ज्यादा प्रभावित समूहों में शामिल हैं।
We all agree that the impact of drowning is felt most acutely by the family, by the local community, and it's really important together, whether that's Australia or India, that we recognise that burden and that opportunity from a prevention perspective. This is not, numbers, these are real people, and the real people themselves, the local communities, are the ones that are more likely to drive solutions. Increasingly, we're concerned about people of Indian origin living in Australia, exploring waterways, learning to swim, but unfortunately drowning is sort of creeping up in that community. So the Indian delegates here are helping us understand some of the social, cultural elements of water safety, and we're also learning really closely with people in the room about how they're going about presenting water safety as a choice.
मेलबर्न के रहने वाले हरप्रीत कांद्रा वाटर सेफ्टी कार्यक्रमों को लेकर पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं और इस वर्कशॉप में शामिल हैं। वे बताते हैं,
नताशा जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर काफी डिस्कशंस हो रहे हैं इस वर्कशॉप में। अगर श्रोताओं के बेनिफिट के लिए एक मैं आपको फिगर कोट करूं, डेटा इंडिया से जो आ रहा है वो बता रहा है कि तकरीबन 38,000 से 50,000 लोगों की डेथ हर साल ड्राउनिंग से इंडिया में होती है। अब अगर हम इस फिगर को माइन्यूटली देखें तो 38,000 से 50,000 की फिगर बहुत बड़ी फिगर है। ये जो लाइफ का लॉस हो रहा है इसको अवॉइड किया जा सकता है, और इस वर्कशॉप में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहा है कि हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की एक्सपर्टीज है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया को, ताकि इंडिया में लोग पानी के साथ कनेक्ट हों और ड्राउनिंग रेट्स रिड्यूस हों। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, जो एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, इंडिया से काफी लेसन्स लेने क्या की ये अपॉर्चुनिटी है, और यही मुद्दों पर इस वर्कशॉप में चर्चा हो रही है।
जी, कितने एक्सपर्ट्स इस वर्कशॉप में अभी शामिल हैं?
तकरीबन 30-32 लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड की है, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 20 लोग जो हैं वो इंडिया से ट्रेवल किए हैं और 12 ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं। इसमें रॉयल लाइफ सेविंग सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने ये वर्कशॉप होस्ट की है, वे प्रेजेंट थे, उनके काफी रिसर्चर्स प्रेजेंट थे, काफी पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स और दूसरी वॉक्स ऑफ लाइफ से, लाइफ सेविंग विक्टोरिया से, स्विम ऑस्ट्रेलिया से भी नुमाइंदे आए थे।
जी, और ऑस्ट्रेलिया भारत की किस प्रकार मदद कर सकता है इन आंकड़ों को कम करने के लिए?
नताशा जी, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत एक्सपर्टीज है एक्वेटिक इंडस्ट्री की, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। इंडिया को रीइन्वेंट व्हील करने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं अपने स्विम सेंटर्स के डिजाइन के लिए, ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चर से सीख सकते हैं। सो काफी चीजें हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया की मदद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक्वेटिक इंडस्ट्री के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर स्विमिंग इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड हो जाती है, हमें कितने स्विम सेंटर्स चाहिए होंगे इंडिया में, और वो सब डिजाइन करने के लिए अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत वेस्टेज होगी। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, both countries, and I think both countries can then become a leader in developed and developing economies to help each other, you know, reduce the rates of drowning and save lives.
SBS News से Angelica Wade की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है Natasha Call ने SBS हिंदी के लिए।
और इस रिपोर्ट के बाद कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार सुनेंगे भारत की बड़ी खबरें विश्व रत्न श्रीवास्तव के हवाले से। लेकिन कार्यक्रम में आज मैंने आपसे कई सारी चर्चाएं करी हैं भाई। सबसे पहले तो अगर आप सितार सुनने के शौकीन हैं तो आप सुन सकते हैं उस्ताद शुजात हुसैन खान को सिडनी में। 6 मार्च को ये कार्यक्रम है और इसका हमारे पास एक गिव अवे पास है। और अगर आप ये पास जीतना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि उस्ताद शुजात खान कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है। इसके अलावा मौसम भयंकर बारिश वाला हो रहा है, तो मैंने आज आपसे पूछा है कि बारिश के मौसम में किस प्रकार का खाना आपको पसंद है, क्या आप पसंद करते हैं कि भाई बारिश हो, चाय हो, क्या हो, चाय के साथ क्या हो, तो ऐसा कुछ बताइए मुझे। 04397997667 हमारा नंबर उसके लिए भी है। और अगर आज के कार्यक्रम में कोई गीत सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो इतने सारे सवाल हैं, किसका जवाब देंगे आप बताइए मुझे। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के उस पार भारत की बड़ी खबरों के साथ फिर हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर। और अब ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को। और आइए रुक करते हैं भारत की बड़ी खबरों का, जिन्हें लेकर के आते हैं विश्व रत्न श्रीवास्तव सीधे दिल्ली से हमारे लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे से वापस लौट आए हैं। इस दौरे को सरकार ने काफी सफल बताया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वार्ता हुई। इस बैठक में रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। साइबर सुरक्षा, कृषि, नवाचार, AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर घोषणा हुई है। इसका अधिक ब्यौरा देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री कहते हैं,
दिस हैज बीन एन incredibly rich visit in terms of outcomes, a very, very productive visit. which has deepened bilateral cooperation across multiple sectors. The two leaders also decided to elevate the relationship to an India-Israel special strategic partnership for peace, innovation and prosperity. Following the delegation-level talks, both leaders jointly addressed a press conference. A number of MOUs and agreements, I think nearly 16 in total, were exchanged in the presence of the leaders. There were also several announcements.
भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों से जोड़ते हुए विक्रम मिस्री ने कहा।
This visit comes in the context of an effort by the Prime Minister himself to take interest in and pursue our relations, India's relations with all the countries in this region in West Asia. In slightly over the last 1 year, the Prime Minister has paid visits to Kuwait, to Saudi Arabia, to Jordan, to Oman, and now to Israel. And of course, he has received several heads of state, heads of government, and other dignitaries from this region as well.
सरकार भले ही इसराइल दौरे को सफल बता रही है, पर विपक्ष ने इस दौरे के समय को लेकर सवाल उठाया है। भारत की विदेश नीति पर अमेरिका और इसराइल का दबाव होने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले बोलकर अमेरिका के सामने घुटने टेकने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब इतिहास में ढूंढा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विदेशी प्रभाव होने का आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इस बारे में कहते हैं,
भारत की जमीन उसको विदेश के साथ जो गिफ्ट में देने की ये जो बातें करते थे नेहरू, ये आखिर क्यों करते थे, किस प्रेशर में करते थे और ऐसे क्यों किया गया? क्या इसके पीछे उन्हें कुछ बड़ा गिफ्ट मिलता था? क्या चीन और पाकिस्तान ने नेहरू को रिश्वत दी थी? वॉज नेहरू ब्राइब्ड बाई चीन एंड पाकिस्तान, बाई चाइना एंड पाकिस्तान, एंड दैट वॉज द रीजन एज टू वाई नेहरू गिफ्टेड लैंड्स ऑफ इंडिया टू बोथ दीज नेशंस इज समथिंग दैट वी शुड बी आस्किंग द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को ठुकराने का आरोप पंडित नेहरू पर लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा,
एक समय था 1950 में अमेरिका ने और 1955 में, 50 में अमेरिका ने और 55 में सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने यह प्रपोज किया था कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, मगर नेहरू जी ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि इससे चीन नाराज हो जाएगा एंड वी शुड डिक्लाइन द ऑफर of becoming a permanent member of the UNSC. नेहरू जी ने अमेरिका और रूस के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते और एपस्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा आक्रामक हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने फाइल्स में नाम आने पर चुप्पी को लेकर कहा,
Those whose names have come in the Epstein files and are holding public office have resigned. But here our government doesn't seem to think that there's any moral accountability towards the public. There is moral accountability. If your name appears in this kind of a file, and not just name, if you're repeatedly emailing up and down and clearly know the activities of this person, you have clearly been engaging in conversations, meetings, etc. with this person, then, and you are a minister, you have some moral accountability towards the people of your country. And it's visible all across the world.
AI summit के दौरान हुए युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोल रही है, तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के हवाले से सरकार को घेरते हुए कहा,
आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी मुकदमा और जेल, लाठी मुकदमा और जेल, ये करीब करीब लगभग तय है।
राजनीति के बाद चर्चा खेल के मैदान से। T20 विश्व कप में भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। गुरुवार को चेन्नई में खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 256 रन बनाए थे। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब अपने आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को मात देनी होगी। वहीं भारत के ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
और इसी के साथ वक्त एक छोटे से अंतराल का। भाई, मेरे पास आपके कुछ संदेश आए हैं और मेरे पास हेमलता पुरोहित जी का संदेश है जो कह रही हैं कि नमस्ते वृषाली जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम। व्हेन इट इज अ रेनी डे वी प्रेफर पकौड़ा एंड हॉट मसाला चाय। मसाला चाय सब की बड़ी पसंद है, लेकिन मैं क्योंकि चाय नहीं पीती तो मुझे कॉफी के साथ कुछ चाहिए होता है। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। खैर, इसके अलावा भी मेरे पास आपके कुछ संदेश हैं, कुछ गीतों की फरमाइशें हैं जो मैं आपको बताऊंगी पढ़ करके इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार करेंगे मुलाकात प्रबल गुरंग से जो SBS स्टूडियो में भी आए थे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर, क्योंकि प्रीति जब्बल के साथ प्रबल गुरंग की बड़ी ही दिलचस्प बातचीत हुई और आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। तो कहीं नहीं जाना है, बने रहना है SBS हिंदी पर। मैं बस यूं गई और यूं आई लेकर के बहुत सारी दिलचस्प बातें भी और गाने भी। तो बने रहिए SBS हिंदी पर। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। दोस्तों, अब एक बड़े दिलचस्प अंश की बारी आ गई है। प्रबल गुरंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने मेट गाला से लेकर के मेलबर्न के हाल में जो मेलबर्न में फैशन फेस्टिवल हुआ 2026 का, उसके मुख्य मंच तक अपनी जगह खुद बनाई। उनके कपड़े, उनकी बातें, उनके डिजाइन खुद अपने आप में उनके व्यक्तित्व की परिभाषा है। लेकिन क्या है उनका अपना व्यक्तित्व, क्या है उनकी आकांक्षाएं, किस तरह से वो बात करते हैं पहचान के ऊपर, किस तरह से वो खुद को देखते हैं आज विश्व पटल पर फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में, इन सब चर्चाओं में हमने पाया उन्हें SBS के स्टूडियो में प्रीति रबल के साथ। तो आइए सुनते हैं उस चर्चा का एक छोटा सा अंश, और आपको ये पूरा पॉडकास्ट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा sbs.com.au/hindi पर। तो आइए पहले इस चर्चा का अंश सुनते हैं और फिर पढ़ते हैं आपके संदेश जहां आपने मुझे अपने फरमाइशी गीत भेजे हैं, बारिश में अपना फेवरेट फूड भेजा है, और या फिर अगर आप शुजात खान के शो पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एंट्री भेजी है, हमें बताया है कि शुजात खान कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं। वैसे इन तीनों चीजों के लिए आप हमें संदेश भेज सकते हैं 04397997667। और अब रुख प्रबल गुरंग और प्रीति जब्बल की बातचीत का।
नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जब्बल। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने डिजाइन के जरिए पूरब और पश्चिम को एक ही मंच पर ला खड़ा किया है। बचपन में उन्हें लड़की की तरह चलने के लिए चिढ़ाया जाता था, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर उनका नाम और काम दोनों गूंजते हैं। ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों के लिए डिजाइन करते हैं, मिशेल ओबामा ओपरा विनफ्री, बियॉन्से, दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम उनकी डिजाइनों से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपनी कामयाबी को तालियों से नहीं बल्कि अपने प्रभाव से मापते हैं। हाल ही में वे पेपाल मेलबर्न फैशन फेस्टिवल के बिजनेस इवेंट में की नोट स्पीकर के रूप में मंच पर दिखाई दिए और अब ऑस्ट्रेलिया में इस फेस्टिवल के 30 साल पूरे होने के खास मौके पर वो हमारे साथ हैं। आइए सीधे बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे मेहमान प्रबल गुरुंग का काम फैशन की दुनिया को किस तरह नई दिशा दे रहा है। प्रबल, आपका SBS हिंदी पर दिल से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
Thank you very much. What a privilege to be here, honestly, really, to in a city that I love so much with the people that I've grown to love even more. So thank you.
प्रबल, आपका जन्म सिंगापुर में हुआ, परवरिश काठमांडू में हुई, पढ़ाई नई दिल्ली में की और अब आप न्यूयॉर्क में रहते हैं। लंदन और ऑस्ट्रेलिया में भी आपने समय बिताया है, लेकिन मैंने सुना है कि मेलबर्न शहर आपके दिल के काफी करीब है, तो मेलबर्न से आपका खास रिश्ता क्या है, हमारे साथ साझा कीजिए।
You know, I came to Melbourne with utmost curiosity. I traveled different parts of the world, but something, you know, if you you'll understand, we're from that part of the world where sometimes we don't have any reason or logical reason why we travel. The city or the air calls you, beckons you. And I remember feeling that way, and I came to Australia and I was completely smitten by the people, and I was just like mesmerized by how artistic and eclectic and free they were. And then I fell in love, you know, and that I think Sonambe Suhaga, that's what they say, you know, and you know, that's what it is. It was just like to love a place, love its people, and then to also discover love and hence discover myself. That is like an incredibly privilege that I had, and so I'm happy to be back.
Bilkul sahi kaha aapne. Melbourne ke paas dene ke liye bahut kuch hai. Yahan ka fashion bahu sanskritik pehchan ka jashn manata hai, First Nations ki karigari ka samman karta hai aur pravasi samuday ki kahaniyon ko samne lata hai. Yahi vividhta is shahar ko itna khoobsurat aur rehne layak banati hai. प्रबल, 2025 के मेट गाला में सिंगर दिलजीत दोसांझ का जो लुक खूब चर्चा में रहा, उसके पीछे आपकी सोच और मेहनत थी। कस्टम प्रबल गुरुंग शेरवानी में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं, ये आइडिया कैसे बना और दिलजीत इस पूरी तैयारी में कितने शामिल रहे?
What an honor. First, let me just start with, what an honor to have the opportunity to dress someone like him. You know, just so that you know, my sister who lives in Nepal, my brother lives in Mumbai, and me, we talk almost every day, incessantly. They're my best friends. They're my moral compass. They're everything. They're my North Stars in so many ways. I remember I had taken Deepika Padukone, I'd taken Alia Bhatt, and I was having this conversation. It was my brother who brought it up, and I said, you know, do you know Dilijit? And I said, of course I know. I saw him at Coachella, like, you know, and I love him and I love his music. And he was like, maybe you should think about taking him. And my brother is like that. He's very thoughtful about it. And I was like, you know what? I never thought about that idea. Like, you know, and so we reached out to him and few back and forth conversation. And he was like, absolutely. I had a conversation with him and I said, you know, there's so many ways to show up at Met Gala. What is it that you want to do? Because all my life, you know, when I was in fashion, when I've been in fashion ever since, through creativity, I've fought for diversity, or just more than fighting for it, also shown up in a way that they can't ignore us. Now, I have someone, Diljit, and I asked that question simply because when I saw him at Coachella, he performed unapologetically the way he is, who he is. And that level of confidence and power, it's something else, you know. So when we went back and forth all the conversation, and I sent him sketches and everything, and, you know, he really loved it. And it was very much, I would say, a lot of conversation and collaboration. And when our conversation landed, you know, it was like, you know, and then he showed up in the studio for the, like, fittings. And he, you know, he's very, like, I wouldn't say introverted, but he's very introspective. So I walked in the showroom and I said, Sasriya Kalji. That's what I said. He was like, oh my God. I said, you speak Punjabi? And I said, Main Punjabi gal karni aandi, thodi bahut zyada nahi. You know, so I said, but then we started talking. He was just like, oh my God, I'm completely at ease. And that's what my job as a creative person is, to make sure that another creative person, another creator who's going to show up and make the continent and the country proud, my job is to make sure that everything is done seamlessly.
Probably ye jo aapne shahi royal look banaya hai, design kiya hai, ab unke Daljeet ke concerts mein bhi dikhai de raha hai. Unke jo fans hain is andaaz ko dohra rahe hain, puri puri families wo cape pehen ke aa rahi hain, to ye jo style hai ye lagatar popular hi hota ja.
Oh my God, is it true?
Absolutely.
Oh my God, that's amazing. Thank you so much for saying that, because it's also, I will say, you know, India has given me my roots, my wings, and in so many ways, my knowledge. And I'm forever, forever grateful to that country. It gave me in so many ways my identity and my voice and my ability to dream. And to bring that kind of level of craftsmanship and show it in that world, you know, it was something not to be tokenized, you know, for a long time like it has been. And it's like, it's something that is such a big part of that continent where we come from. And just to be able for people to see that, I mean, I'm forever in chills with that, you know, so grateful for that. And I will say, though, it is never just me. It never is. I have an incredible team, and he had an incredible team, so we all collaborated. So for me to sit here and take credit for it is like, you know, it's not right. So, like, I just want to make sure that all the people involved, the team was, like, you know, there was also acknowledged. So I just want to say that.
Is waqt Indian fashion par duniya ki khaas nazar hai. अंबानी जैसी शादियों की चमक, बॉलीवुड का असर और फिर भारत का ग्लोबल ब्रांड्स के लिए एक बड़ा बाजार के रूप में उभरना, आपके अनुसार इस दौर को रफ्तार कौन दे रहा है और आज पश्चिमी दुनिया भारतीय डिजाइनरों को किस नजर से देख रही है?
I will say, for me, for someone who's understood the power of India, the storytelling, not just the power of economic power, I'm talking about the storytelling, history and heritage. I'm like, you know, to me, I just feel like it's about time you got in the game. We knew it. We've known it. That is our strength, you know, that part of the world. And so when I look back at it, you know, what is happening is people are coming around to it, that people are no longer, like, you know, kind of, like, let's say, looking in a different lens the way they used to live, you know. I like to call it a colonial lens, you know. And but now it is more of a celebratory lens. They've understood that no longer in isolation the majority can win. You know, I think collaboration, contribution is the key of existing in this world. So for India, and that, you know, just to come in power, you know, obviously there's a glamour. There's all that stuff that comes with it. And, you know, whether it's a wedding, whether it's a Bollywood. But I feel at the crux of it all, even a wedding, even a film, there's a storytelling about family, community, reverence, respect, history. And that is what is the magic is. Magic, what you see outside is not the magic. Why it happens? Why does that wedding happen? Why is the film made? Who makes it? That is the magic of it all. And I always say that it's the nuances of it that we get to learn in places like India or Nepal or that part of the world where we see. Because boil it down, simplify to you, the way women wear saris, the multiple ways of it, the way there is, like, you know, the grace of it all, the nuances is who we are. So the world is just catching up.
Yeah. आखिर में भविष्य की बात करते हैं कि 2026 और उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में किन ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए और तेजी से विकसित हो रही एआई की भूमिका को आप फैशन इंडस्ट्री में किस रूप में देखते हैं?
Let me just answer your question first about the trends.
Yes.
It's just not in 2026, and I'm just not giving this answer. I truly believe, I really hope that people feel the freedom to be who they are, dress however they are, not worry about their age, body, anything, whatever they feel like. If today they feel like wearing colorful, wear it. You know, I think that's a trend. Like, and I always say my biggest freedom was not, you know, initially as painful as it was, not getting validation when I was growing up, eventually freed me because I never needed it then, you know. So I hope people are free to be themselves. Now, going back to your AI question, I think it is extremely important because it helps in the administrative side of things. It really, and that is just progress. Now, creatively, what I feel is, what I see consumed, whether it's at the museum, at the Met, or let's say a music that I listen to, food that I eat, anything, while AI might be able to say, you can go here, you can do this, what I feel, what I sense, and I now what I turn into, they can't, you know, like fathom that. You know, AI is not equipped yet to feel what I feel. Do you know what I mean? So all of us can have the same experience, but different reactions. Whereas I think AI is so automated in so many ways, you know. And so I also look at it, like, it's like, you know, do you remember the time when, you know, there was the internet was taking forever to load and all of that stuff? Like, you know, and now we have emails and everything. So I, as a creative person, I'm not afraid of it at all, because it really pushes and challenges you to do more. So yeah, I'm excited about it, to be completely honest.
और इस पूरे अंश को अगर आप सुनना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप जा सकते हैं www.sbs.com.au/hindi पर, जहां पर आपको प्रबल गुरंग के साथ प्रीति जबल की हुई इस बातचीत का पूरा पूरा पॉडकास्ट मिल जाएगा। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद लेकर के आऊंगी नॉनस्टॉप गीतों की रेलगाड़ी। तो कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर वैशाली के साथ। और आज आप मुझे बता रहे हैं कि बारिश में किस तरीके के खाने आपको पसंद हैं। 04397997 हमारा नंबर है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर, क्योंकि आपकी पसंद के ही सारे गीत लेकर के मैं आ रही हूँ। और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर, आप सुन रहे हैं वैशाली को। आइए अब फटाफट रुक करते हैं हमारी गीतों की रेलगाड़ी का, और उसमें मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है राजेंद्र वोरा जी की क्रेगी बर्न से, जो चाहते हैं कि मैं वचन फिल्म की का गीत लेकर के आऊं, दिल का गुलदस्ता बाहों का हार। और मैं आपके लिए ये गीत लेकर के आई हूं, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं, जिसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी एक बड़ा ही दिलजीत दुसांझ का गीत। कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे अभी भी बता सकते हैं, 04397997 हमारा नंबर है। और बस इसी के साथ वैशाली आज के लिए आपसे ले रही है विदा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखिएगा अपना बेहद ध्यान, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।